पृष्ठ संख्या 52 रहीम। भक्ति काल का वैविध्य कई दृष्टियों से रहीम के कृतित्व से पूरा होता है। मुसलमान और उस पर भी तत्कालीन शासन के अंग होकर वे हिंदू देवताओं का स्तुति गान करते हैं। शाही दरबार के मान्य सदस्य होते हुए भी सूफी संतों भक्तों की कोटि से अपने को जोड़ते हैं। उन्होंने अपने काव्य में 3 काव्य भाषाओं का स्वतंत्र प्रयोग किया, हिंदी, संस्कृत, फारसी, और फिर हिंदी काव्य भाषा के अंतर्गत वे उसके 3 महत्वपूर्ण आधारों का प्रयोग करते हैं, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त नीति, श्रृंगार तथा भक्ति के 3 लोक प्रचलित कवियों में उन्होंने अपने को व्यक्त किया है। हिंदू मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के वे प्रतिनिधि कवि हैं। दोहे जैसे छोटे छंद को चुनकर, जिनकी भी संख्या कुछ बहुत नहीं है, रहीम ने मनुष्य जीवन के वैविध्य को कैसे करके समेटा है यह इसी रूप में समझा जा सकता है। अपनी भक्ति निष्ठा और श्रृंगार चेष्टा के बीच उनका कृतित्व भक्ति और रीति के संधि बिंदु पर है। पृष्ठ संख्या 53। रहीम के दोहे सूक्ति शैली में रचे गए हैं, जो परंपरा संस्कृत काल से चली आ रही थी। इस मुक्तक परिपाटी में मानव जीवन के सूक्ष्म और चतुर पर्यवेक्षण को विशेष रूप से व्यक्त किया गया है। रहीम में बहुत बार इस सूक्ति को मर्म स्पर्शिता भक्ति के संस्कार से मिली है और तब वह कविता से एक रूप हुई है, अन्यथा सूक्ति को कविता संकोच के साथ ही माना जाता रहा है। इस संदर्भ में कवि की यह उत्प्रेक्षा द्रष्टव्य है, धूरी धरत नित शीस पै कहू रहीम के ही काज, जही रजमुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। रहीम का काव्य मुख्यतः सूक्ति काव्य है, जहाँ भाषा का सीधा और उपकरणात्मक प्रयोग होता है, सर्जनात्मक उतना नहीं। नीति के तो प्रायः सभी दोहों में दूसरी पंक्ति दृष्टांत के तौर पर आती है। दृष्टांत और बिंब में मौलिक और गुणात्मक अंतर होता है। दृष्टांत पहले कही गई बात के स्पष्टीकरण का साधन होता है, पर बिंब में उसका विधान बात से अभेद रहता है। बिंब दृष्टांत की तरह साधन न होकर साधन और साध्य स्वयं ही है। उदाहरण के लिए इस दोहे को लिया जा सकता है, जो रहीम मन हाथ है मनसा कहूँ किन जाही, जल में ज्यो छाया परी काया भीजति नाही। यहाँ दूसरी पंक्ति में जो पर्यवेक्षण है उसमें बिंब रचना के लिए कच्चा माल तो है, पर वस्तुतः वह दृष्टांत के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह अर्थ के स्पष्टीकरण का साधन है, स्वयं अर्थ साक्षात्कार का रूप नहीं, और इसलिए उसका विधान अलंकार का है जो अलग चमकता है। बिंब होने पर वह भाषा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है। उर्दू कविता में भी भाषा का सीधा रूप प्रयुक्त होता है, पर वहाँ व्यंजना बिंब के सहारे भले विकसित न होती हो, हल्के मुहावरों के माध्यम से बनती है। सूक्ति काव्य की सफलता कवि के पर्यवेक्षण को नपे तुले शब्दों में समेट लेने में है। भाषा का इससे दक्ष प्रयोग वहाँ अपेक्षित नहीं, वहाँ तो नीति वचन सीधे ही कह दिया गया है, उसे व्यंजित करने की जरूरत नहीं, केवल दृष्टांत से संपुष्ट करना पर्याप्त है। इस दृष्टि से उर्दू कविता में भाषा का सीधा प्रयोग सूक्ति काव्य के भाषा प्रयोग से अलग है। एक दृष्टि से सूक्ति काव्य में काव्य भाषा की बहुत सीमित क्षमता अपेक्षित है, वहाँ महत्व पर्यवेक्षण का है और उसे नीति वचन के रूप में कथित करने का। सूक्ति काव्य की सरलता मानव जीवन के सीधे पर पैने पर्यवेक्षण में सहायता देती है। जीवन के विविध संघर्षों द्वंद्वों की स्थितियों को रहीम ने कम लिया है, इसीलिए उनकी सूक्ति शैली सीधा भाषिक विधान और नीति सिद्धांत का कथ्य परस्पर बहुत अनुकूल है। रहीम की ही शब्दावली में उनके दोहों में सुई की विनम्र वेधकता है, तलवार की तीव्र आक्रामकता नहीं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। कुल मिलाकर रहीम के कृतित्व में नीति के दोहों और श्रृंगार के बरवे दोनों में पर्यवेक्षण का सरल यद्यपि पैना रूप है, पर अनुभव की संश्लिष्टता और जटिलता नहीं, जिसका चित्रण कवि के लिए अभीष्ट भी न था। जैसा संकेत किया गया, हिंदी काव्य भाषा की 3 महत्वपूर्ण आधारों ब्रजभाषा, अवधि, खड़ी बोली का रहीम उपयोग करते हैं। उनके कृतित्व का प्रधान और प्रसिद्ध अंश दोहे ब्रजभाषा में हैं, बरवे अवधि में लिखे गए हैं और मदनाष्टक खड़ी बोली में हैं। इस दृष्टि से पृष्ठ संख्या 54, अन्य अनेक कवियों की तुलना में रहीम अधिक हिंदी कवि हैं। हिंदी काव्य भाषा के आधारों में से बर्वे के लिए अवधि को चुनकर कवि ने काव्य भाषा और छंद की अंतः प्रकृति के सामंजस्य को खूब बारीकी से समझा है। बर्वे हिंदी का छोटा छंद है और उसके विधान में कई स्थलों पर मात्रिक दृष्टि से लघु गुरु का क्रम बहुत अनुकूल पड़ता है, विशेषतः पहले और तीसरे चरण के अंत में। इधर अवधि में संज्ञा के तीनों रूपों लघु, दीर्घ, दीर्घतर, घोड़ा, घुड़वा, घुड़ौना में से दीर्घ रूप घुड़वा अधिक प्रचलित है। रहीम के बर्वे नायिका भेद की ध्वन्यात्मकता, कोमलता और सरसता बढ़ाने में धनिकवा, पुरोजवा, करेजवा, डगरिया और निर्लजवा जैसे दीर्घ शब्द प्रयोगों का गुणात्मक योगदान है। यहाँ तक कि परिवार, विरोध और अपराध जैसे तत्समों में भी रहीम ने वा प्रत्यय लगा दिया है। इन दीर्घ रूप संज्ञा रूपों के न होने के कारण ही ब्रज भाषा में बर्वय छंद का निखार संभव नहीं हो पाता। एक कुशल कवि के रूप में रहीम ने अपनी हिंदी काव्य भाषा के विविध आधारों में विवेक करते समय छंद और भाषा की लय में संगति पर पूरा ध्यान दिया है।